यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ संसारी जीव जन्म लेता है तो मरण करना भी सामान्य रूप से अनिवार्य होता है। जन्म के पश्चात मरण और मरण के पश्चात जन्म, यह अनादिकालीन जीव की परिणति रही है और यह जन्म मरण का चक्र जब छूट जाता है तब वह संसार मुक्त होता है। संसार यानी जो सरकने का स्थान रहता है उसको संसार कहते हैं, जहाँ पर सरकना है। मरण के पश्चात यहाँ से सरक कर दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से सरक कर पुनः दूसरी जगह जाना, ऐसे 84 लाख योनियों में यह आत्मा जब तक सरकता रहता है उसी का नाम संसार। संसार दशा में रहने वाले जीवों को 14 गुणस्थान होते हैं ऐसा बताया है। कितने गुणस्थान? संसारी जीवों को ही 14 गुणस्थान होते हैं। यदि वह संसार से मुक्त हो जाए तो फिर कोई गुणस्थान में वो रहता नहीं। जो गुणस्थानातीत है वह जीव ही मुक्त जीव है। जो गुणस्थानातीत है वह सरकता नहीं, और जो गुणस्थान सहित है वह सरकता रहता है। सरकने का काम बंद हो इसके लिए क्या करना है? 14वें गुणस्थान में एक बार मरना है। मरना तो है लेकिन 14वें गुणस्थान में एक बार मरण कर लिया फिर सरकना बंद। अंतिम एक बार सरक गए तो हो गया। कहाँ से? मध्यलोक से सरक कर शुद्धालय में पहुँच कर बैठ गए, फिर खत्म। फिर हिलना डुलना नहीं, सरकना नहीं। कोई भी अन्य सिद्ध परमिष्टि अनंत शक्तिशाली आपके पास आकर के जरा सरको ना, हम आए हैं यहां, जगह नहीं छोड़ना। जगह छोड़ने की जरूरत नहीं और छोड़ भी नहीं सकते। यही आत्मा का स्वभाव है। वह अनंत शक्तिशाली है। अनंत शक्तिशाली एक अन्य द्रव्य भी आ जाए या अनंत द्रव्य भी आ जाए तो एक द्रव्य को जो अनंत शक्ति को प्राप्त कर चुका है उसको सरकाना आसान नहीं। एक सेंटीमीटर भी उनको सरका नहीं सकते आप। सिद्ध भगवान को, महावीर भगवान मोक्ष गए, वहां पर विराजमान हो गए और भविष्य में अनंत काल तक अनंत आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करने वाली मान के चले। उसी पावापुरी के सरोवर के मध्य जहाँ भगवान महावीर खड़े होकर के अंतिम दो शुक्ल ध्यान के माध्यम से आघाती कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया, वो वहाँ से सिद्धालय में पहुँच चुके हैं। उसी जगह अनेक लोग बैठ करके तपस्या कर सकते हैं। और उसी जगह से मोक्ष जा सकते। अनंत 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 आत्माएं उसी जगह से जा सकते और जाएंगी ही। यह ढाई द्वीप का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहीं से मोक्ष होता है। ढाई द्वीप के बाहर से तो कोई एक का भी मोक्ष अभी तक नहीं हुआ, असंख्यात द्वीप समुद्रों से, क्योंकि वो भोग भूमि है। वहां पर मनुष्य मोक्ष नहीं जाते, इसलिए वो इधर के जो अंतिम पर्वत है उसका मनुष्योत्तर पर्वत नाम पड़ा, उसके पार मनुष्य नहीं होता। तो पावापुरी से अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष चले जाएं, तो आज जो 2500 साल पहले मोक्ष गए हैं, महावीर भगवान उनकी जगह बना करके देंगे क्या? आप लोग यहीं से आ गए, मैं जहां से मोक्ष गया था उसी जगह से आ गए, एक सेंटीमीटर भी महावीर भगवान वहां से हिलेंगे नहीं। महावीर भगवान के आत्मा में अवगाहित होकर के रहेंगे अनंत आत्माएं, एक में एक, एक में एक, एक में एक। वो पूजन में आता है ना एक श्लोक, एक माही अनेकनो, क्या है वो, एक माही अनेकनो, उसके पहले का पूजन में आता है ये पद्य। एक सिद्ध परमिष्टि के आत्मा में अनंत सिद्ध परमिष्टि के आत्माएं समाहित होकर के रह सकती, यानी इतनी शक्ति है अवगाहना देने की, अपने आप में समाहित कराने की अन्यों को शक्ति है। अनंत आत्माएं उसमें घुस गई फिर भी ये आत्मा स्वतंत्र है और वे भी अनंत आत्माएं अलग अलग स्वतंत्र है, एक दूसरे की अनुभूति कुछ भी परस्पर में नहीं होती। जैसे आपके शरीर में आपकी आत्मा तो है, किंतु निगोदी जीव कितने हैं? अनंत हैं। पर उन अनंत निगोदी जीवों की अनुभूति क्या आपको हो रही? वे निगोदी जीव अनंत जो हैं वो परस्पर में एक ही जगह रहते हुए भी एक निगोदी जीव की अनुभूति सुख दुख का अनुभव दूसरे निगोदी जीव को हो रहा है। सभी अपने सुख दुख के लिए स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर हम सुख दुख में डिपेंड नहीं रहते। घर में भी देख लो, आप जरूर परिवार सहित रहते हैं, एक सुखी है एक दुखी है, एक के विचार वैसा है एक के विचार ऐसा है। एक सुखी है तो सब सुखी क्यों नहीं? में क्या रहस्य है? पिता बहुत सुखी हैं तो पुत्र दुखी है, पुत्र सुखी हैं तो पिता दुखी है। जीव के कर्म अलग अलग है। अब देखो उन कर्मों के उदय के अनुसार ही हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, सुख दुख के अनुभूति में सभी स्वतंत्र हैं, यही तो रहस्य है ना। हम दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपका प्रयत्न सफल हो, वो आपके सहयोग से उपकार से वो सुखी हो, ये कोई जरूरी है? सुख के साधन को उपलब्ध करा दिया तो वो सुखी हो, ये कोई नियम है? पिता कमा करके रख करके चले जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति को कमा करके रख करके चले जाते हैं, रख करके जाने के बाद भी पुत्र दुखी रहता है, ये क्यों है? पुत्र दुखी है, पिता तो सुखी थे, स्वयं सुखी रहे और पीछे वालों को भी सुख का साधन छोड़ के चले गए, फिर भी वो दुखी रहे, तो उनका कर्म क्यों दुखी रहे? उनके कर्म के अनुसार उनके सुख दुख की घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं। अब उनको कैंसर हो गया, 6 महीने की आयु रह गई, डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा गारंटी हम नहीं लेते। जीवन का किसी का भरोसा है क्या? पिता अपना कर्तव्य करते हैं, पुत्र उस संपत्ति को लेकर के सुखी होना चाहता है, पिता ने दिया है तो हम ग्रहण कर लें। ये सुख दुख पिता पुत्र के स्वतंत्र ही होते हैं, हम क्या कर सकते हैं किसी को? हम जो निमित्त बनते हैं अपने तरफ से बनते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करके उनको सुखी होना उनके कर्मों पर डिपेंड है। पाप कर्म का उदय है तो करोड़पति लेकर के क्या करोगे? करोड़ों की संपत्ति को लेकर के क्या करेगा? वो छोड़ के जाना पड़ेगा, वो संपत्ति किसी की नहीं है, न पिता की थी न पुत्र की है। पिता की संपत्ति होती तो ले जाते ना साथ में, पिता मरण करके स्वर्ग चले गए और करोड़ों की संपत्ति छोड़ के क्यों गए? बहुत बड़ी दया थी, पीछे छोड़ के गए। दया नहीं भी होती है तो छोड़ के जाना पड़ेगा, और दया होती है तो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। संपत्ति किसी की होती नहीं है, वो तो यहीं छूटेगा, चाहे आप दे के जाओ बिना दे ही मरण करके जाओ, संपत्ति तो यहीं रहेगी। बैंक के रुपए बैंक में ही रहते हैं, घर में जो कुछ भी चांदी सोना है, घर है, ये सब यहीं पड़ा रहता है। जाते समय हम अकेले जाते हैं, आते समय हाथ पसार के आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे, हाँ हाँ लाए नहीं थे, मुट्ठी में एक नया पैसा भी नहीं था। जन्म लेने के बाद अरे ये तो मुट्ठी बांध करके लाया, क्या लाया है? देखें, खोल के देखा तो कुछ नहीं था, मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसार जाएंगे। ये संसार का सत्य स्वरूप है, इस सत्य स्वरूप को समझकर मरण से पहले जागना है। जागृति ही जीवन है, अगर जाग नहीं पाए पछताएंगे। जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से पछताए हो तो क्या होगा? एक एक क्षण, एक एक मिनट 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 करके समय जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जा रहा है, चातुर्मास कैसा गया मालूम पड़ा क्या? मालूम नहीं पड़ा, फिर भी जा रहा है कि नहीं? गया, चातुर्मास गया। ऐसा ही एक दिन ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कैसी कट गई, और एकाएक कुछ हो गया तो वो कर्म के हाथ में है, आपके हाथ में तो है ही नहीं। एकाएक किसका कैसे क्या कह नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। जीने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, अपनी शक्ति को देखो, शक्ति को नापो, और उसके अनुरूप जो आप मन से करना चाहते हैं, मन में आशा तो है करने का, लेकिन उसको आगे मत ढकेलो, भरोसा नहीं, एक मिनट का बाद का भरोसा नहीं, आगे नहीं ढकेलना। धर्म का कार्य मैं बाद में करूंगा ऐसा कभी नहीं कहना, अभी मन में आया ना अभी ठान लो आज से शुरू। बाद कभी आता नहीं, और बाद कहते 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 जीवन ही बाद हो गया तो खराब हो गया, तो किसके हाथ में? धर्म का जीवन ही सुखमय जीवन है। धार्मिक जीव ही इह भव में और पर भव में सुखी रह सकता है, सुखी हो सकता है। यहाँ भी सुख चाहिए तो धर्म ही शरण है, परभव में भी सुख चाहिए तो धर्म ही शरण है। संपत्ति को तो ले जा नहीं सकते, परंतु संपत्ति देने वाले धर्म को तो ले जा सकते। धर्म करने से जो पुण्य कमाया वो पुण्य तो साथ आएगा, वो यहाँ नहीं रह सकता। वो क्यों साथ आ रहा है? वो कहता है कि तुम धर्मात्मा थे और धर्मात्मा का सम्मान मैं आगे जाकर के पहले से ही व्यवस्था कर दूंगा। पुण्य आपकी व्यवस्था आगे आगे जाकर के करता है, धर्मात्मा पीछे से आता है। पुण्य आपका स्वागत करता है, कितना बड़ा उपकार करता है। जबकि पुण्य एक पुद्गल वस्तु है, पुद्गल परमाणु रूप है, साथ चलता है आत्मा के, पर उपकार कितना करता है देखो। आत्मा चेतन, पुण्य अचेतन, फिर भी आप जाने से पहले सब स्थान को, जगह को, वहाँ पर रिजर्वेशन करना, वहाँ जन्म दिलाना, वहाँ पर सुखी रखने का सभी इंतजाम पहले से ही करता है कि वह शक्ति है। तो देखो तो सही, पुद्गल कितनी सेवा कर रहा है आपका और आप मोक्ष जाने को तैयार नहीं। पुद्गल हमारा सेवक है, हम चेतन हैं। जो सेवा करता है वो सेवक, और जो सेवा को लेता है वो मालिक। आत्मा चेतन, पुद्गल अचेतन, कर्म अचेतन। कर्म हमारी व्यवस्था, आगामी व्यवस्था करके रखा है। पुद्गल के पीछे आत्मा न पड़े, ये समझदारी की बात है। पुद्गल अपने पीछे पड़ता है, ये सिद्धांत है। कर्म सब व्यवस्था कर रहा है कि नहीं देखो, क्या आप ही जाकर के व्यवस्था करते हैं और कर्म साथ देता है? ऐसा है, तीर्थंकर जन्मे ही नहीं, 3 करोड़ रत्नों की वर्षा यहाँ हो गई, गर्भ में आने से पहले ही शुरू हो गया, 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा, आए ही नहीं अभी। वो अपना इंतजाम कर रहा है कहीं। तीर्थंकर गर्भ लेने से पहले, गर्भ में आने से पहले 6 महीने रत्न की वृष्टि, उस महल पर जहाँ जन्म लेना है वहाँ रत्न की वृष्टि हो रही है। ये किसका प्रभाव? आत्मा तो अभी नरक में या स्वर्ग में है, दो ही गति से आते हैं ना, या तो नीचे से आते ऊपर से। तो 6 महीने पहले ही उसका प्रभाव चल रहा है, सूरज उगने से पहले ही धरती पर प्रकाश आ गया है। किरणें तो बाद में आएंगी, लेकिन किरणों का प्रसाद तो पहले से आ चुका। धूप नहीं आई, प्रकाश आ गया है। तीर्थंकर कर्म का उदय नहीं आया, वो जीव भी नहीं आया, वो आत्मा भी नहीं आया। आत्मा तो वही है अभी, अभी 6 माह की आयु शेष है वहां, लेकिन यहां उसका प्रभाव है, रत्न वृष्टि होने लगी। इसमें ये पुण्य को मिटाने का काम है और पाप को कमाने का काम है, ये हिंसा का काम है। और ऐसे अज्ञान से हम अनेक प्रकार के कर्म कमा करके जाते हैं, ये हमारे साथ नहीं देते, साथ नहीं देते। साथ आते हैं लेकिन साथ नहीं देते। पाप साथ आता है कि नहीं, पर साथ देता है क्या? साथ नहीं देता। पुण्य साथ भी आता है और साथ भी देता है, पाप साथ आता है लेकिन साथ नहीं देता। यहां क्या कमाना, और विशेष तौर से पर्व के दिन ही हम पाप कमा रहे हैं। फटाके लगाओ, कहीं वो करो ये करो, हिंसा धर्म है क्या? तीर्थंकरों का धर्म अहिंसा परमो धर्म के हिंसा परमो धर्म? कहीं ये लिखा हो तो बताओ शास्त्र में, फटाके परमो धर्म लिखा है? जीव की हिंसा, जीवों की हत्या, ये अधर्म ही है। पर्व के दिन में हम अधर्म करते हैं तो साथ क्या आएगा? साथ तो आएगा, लेकिन जो साथ नहीं देता वो आएगा, पाप ही आएगा। कोई भी काम पर्व के संदर्भ में या अन्य संदर्भों में, धर्म के दिन आ गए, धर्म करने के दिन आ गए, तो धर्म का मतलब क्या? अहिंसा। उस समय ज्यादा से ज्यादा हम अहिंसक रहे, संयम से रहे, ये अनिवार्य होता है। और उस दिन हमारे सारे क्रिया अनुष्ठान हिंसात्मक हो। चतुर्थ काल में फटाके थे, महावीर भगवान जब मोक्ष गए होंगे तालाब में ले जाकर फटाके फोड़े होंगे लोग, हैं? ये कौन सी परंपरा है? इसको धर्म कहते हैं? ये क्या धर्म की परंपरा हो सकती है? नहीं। महावीर भगवान जब मोक्ष गए थे, इंद्र देवता उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा मनाने आए। उन्होंने वहां दीप भी जलाया तो रत्न दीप जलाया, रत्नों को रखा, रत्नावली, जगमगाने वाले, प्रकाश देने वाले रत्नों को रखा, पूजन भी किया, भक्ति भाव पूर्वक पूजन किया। फटाके फोड़ा क्या? क्या इंद्र देवता को फटाके नहीं मिलते थे? कुछ भी बना सकते थे वो, इतने बड़े समोसरण को मिनटों में, जादू मिनटों में समोसरण की रचना कर सकते हैं, तो फटाके बना नहीं सकते थे क्या? आवाज करने वाले, कितनी बड़ी हिंसा होती है, त्रिसकायिक जीवों की, वायुकायिक जीवों की हिंसा करके हमने आनंद मना लिया। किसका आनंद मना लिया? आज भगवान महावीर मोक्ष गए, आनंद मना लिया, हिंसा करके आनंद मना लिया। तो ये कौन सा ध्यान है बताओ? रौद्र ध्यान। कौन सा रौद्र ध्यान? हिंसानंद। धर्म करने के दिन में हम हिंसा करके आनंद मनाया तो ये हिंसानंद रौद्र ध्यान है। तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ प्रतिदिन, हर समय, पर्व के दिन 10 लक्षण आ जाए, कोई भी आ जाए, हम रूढ़िवाद वाला धर्म करते हैं। लोग जो करते हैं उसको देखा देखी हम भी करते हैं। अज्ञानियों को जो मनोरंजन के लिए अच्छा लगता है, अज्ञानी का धर्म है, वो अज्ञानी करता है। ये ज्ञानियों का धर्म है क्या? ज्ञानियों का धर्म नहीं है। तो ज्ञानी कौन सा धर्म करता है? ज्ञानी अहिंसा धर्म करता है, और अज्ञानी हिंसा तो धर्म है ही नहीं, केवल हिंसा करता है, धर्म तो रंच मात्र नहीं करता। पर्व के दिनों में विशेष रूप से हिंसा करना, दीपावली के बाद कोई फटाके नहीं फोड़ेगा, पर जिस दिन धर्म करना है उस दिन ही ज्यादा हिंसा करना। धर्म का स्वरूप बदल गया, धर्म की परंपरा बदल गई, धर्म दूषित हो गया, धर्म विकृत हो गया। दीपावली जिस कारण से मनाते थे वो कारण दूसरी तरफ रहा, परंतु मनोरंजन के लिए हमने कुछ भी किया पर्व के दिनों में, हिंसा के कार्य किए, इंद्रिय विषयों को अच्छी तरह से निर्माण करके उनको भोगा, ये धर्म के दिनों में कार्य होता है। अन्य दिनों में तो धर्म की याद भी नहीं आती, लेकिन धर्म याद करने के जो दिन आते हैं उस समय विशेष रूप से इंद्रिय विषय और हिंसा ये हावी हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को अज्ञानी करते हैं, उनका अनुकरण क्या करना? आपके मन में ये भी विचार नहीं आना चाहिए कि पड़ोसी के लड़के फटाके उड़ा रहे हैं, उनके माँ बाप ने उनको इतना पैसा दे दिया तो अपन भी दे दें अपने बच्चे को। नहीं देंगे तो पड़ोसी क्या कहेगा, क्या तुम्हारे यहाँ पर पैसा नहीं है क्या, इतना ही कहेगा और क्या कहेगा। और इतने के लिए आप सोच करके अपने बच्चों को भी पैसा दोगे, इस तरह का मान सम्मान चाहोगे, दूसरा क्या कहेगा। तो दूसरा तो हिंसा के गर्त में जा रहा है, अपन को भी जाना है क्या? नहीं, धर्म दूसरे के वजह से नहीं होता, दूसरा कर रहा है इसलिए अपन करे ऐसा नहीं होता, देखा देखी भी नहीं होता। देखा देखी में तो रूढ़िवाद आ जाता है, और धर्म को ही देख करके धर्म करने के लिए अपन बैठते हैं तो वो कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, उनको मालूम है लेकिन केवल उनकी क्रियाओं का फॉलो किया, अनुकरण किया, ये क्या रूढ़िवाद नहीं? केवल क्रियाओं का अनुकरण करना ये रूढ़ी नहीं? अवश्य ये भी रूढ़ी है, एक हिंसात्मक धर्म कर रहा है और एक देखा देखी धर्म कर रहा है। पूछा जाए कि इसको क्यों किया, वो कर रहा था इसलिए हमने किया, इसका कुछ भी फल नहीं है, व्यर्थ है ये क्रिया व्यर्थ है। और व्यर्थ की क्रिया करने से लाभ तो कुछ भी नहीं है, हानि है क्या? नहीं, बहुत हानि है। जैसे उसने कोई अच्छा काम किया, हमने भी अच्छा काम किया लेकिन भाव से नहीं किया, वो कर रहा है इसलिए हमने किया, तो विदाउट भाव के परिणाम के उसको समझे बिना करेंगे तो भी उसका फल नहीं मिलता। धर्म निरपेक्ष होकर के किया जाता है, निष्प्रह होकर के किया जाता है। निष्प्रह यानी अकेला होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र विचारधारा से किया जाता है, देखा देखी भी नहीं, पूछ करके भी नहीं, किसी पर डिपेंड होकर के भी नहीं, ऐसा धर्म किया जाता है। डिपेंड होना भी परतंत्रता है, धर्म परतंत्र है क्या? आप कहो तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जैसे एक साहूकार को नौकर पूछता है, आप कहो तो मैं कर लूं, आपका आदेश के बिना मैं कैसे करूं। धर्म करने के लिए पूछा नहीं जाता, मन में आया करना शुरू कर दिया। महाराज, फिर महाराजों का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए, देवशास्त्र गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए कि नहीं? आशीर्वाद तो ले सकते, पर वह आशीर्वाद आपके मंगल भावना की पूर्ति के लिए है, स्वतंत्रता के लिए नहीं है वो, आप स्वतंत्र हैं, परंतु आशीर्वाद से आप आगे बढ़ रहे हैं ताकि उस धर्म के कार्य को करने में हमारा आत्मबल और बढ़े, इस उद्देश्य आशीर्वाद लिया जाता है आत्मबल को बढ़ाने के लिए। यह आत्मा का बल अंतरंग में जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे स्वतंत्र अवस्था भी बढ़ती जाती है। देखो गुणस्थान 14 है, पहले गुणस्थान में जितनी परतंत्रता है उतनी परतंत्रता दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, ये स्वतंत्र दशा बढ़ती 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 जाती है। एक श्रावक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, एक पंचम गुणस्थानवर्ती, इसमें ज्यादा स्वतंत्र कौन है? पंचम गुणस्थानवर्ती ज्यादा स्वतंत्र, एक पंचम गुणस्थानवर्ती है और एक छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, स्वतंत्रता किस में अधिक है? छठे गुण स्थान। एक छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं और एक तेरहवें गुण स्थानवर्ती अरहंत भगवान है। स्वतंत्र कौन ज्यादा है? अरहंत। और एक तेरहवें गुण स्थानवर्ती अरहंत हैं और एक सिद्ध परमेष्टि है, इसमें कौन स्वतंत्र ज्यादा है? स्वतंत्रता बढ़ती जाती है कि नहीं? धर्म कमाने का मतलब स्वतंत्रता को कमाना। धर्म कमाओ, क्या कमाओ? स्वतंत्र हो जाओ, मतलब धर्म मार्ग पर बढ़ो। किधर बढ़ो? स्वतंत्र मार्ग पर बढ़ो, आत्मा को स्वतंत्र बनाओ। धर्म का दूसरा नाम है स्वतंत्र अवस्था, इंडिपेंडेंट अवस्था, उसी का नाम धर्म। सिद्ध परमेष्टि किस पर डिपेंड है? किसी पर डिपेंड है नहीं। अरहंत किस पर डिपेंड है? नहीं, वो परतंत्रता की एक मजबूरी है वो, पर उस पर डिपेंड नहीं है वो। उसी परतंत्रता को दूर करने का पूरा प्रयत्न पुरुषार्थ चल रहा है। मुनि महाराज किस पर डिपेंड है? डिपेंड तो किसी पर नहीं, ये भी, पर पराधीन तो है। पराधीन का मतलब परतंत्र, परतंत्रता तो है, परतंत्रता है। कर्मों ने हमें घेर रखा है और उन्हीं कर्मों को दूर करने के लिए संयम रूपी साधन को अपन ने अपना लिया है। इसी संयम से उन्हीं कर्मों को दूर करेंगे, यानी कि संयम स्वतंत्रता पाने का एक साधन है। भारत को स्वतंत्रता मिली, किस आधार से मिली? अहिंसा और सत्य को अपनाने पर। अहिंसा बहुत बड़ा शस्त्र है। ये शस्त्र न होकर के भी शस्त्र है, और शास्त्र में सर्वत्र अहिंसा की ही महिमा गाई गई है। अहिंसा को ही धर्म कहा है। अहिंसा की महिमा शास्त्रों में ही। शास्त्र कहता है स्वतंत्र होना चाहते हो तो शास्त्र को अपनाओ, शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसको अपनाओ, वही आपका शस्त्र है, स्वतंत्र हो जाओगे। अहिंसा के हथियार से ही कर्मों को गिराया जा सकता है, धराशायी कर सकते हैं। और अहिंसा क्या है? परतंत्रता का अभाव अहिंसा है। परतंत्रता हिंसा है, बंधन हिंसा है, स्वतंत्रता अहिंसा है, अहिंसा स्वतंत्रता है। अहिंसा धर्म भी है, अहिंसा अहिंसा भी है, अहिंसा स्वतंत्रता भी है। अहिंसा कहो, स्वतंत्रता कहो, धर्म कहो, सब एकार्थक है। जहां जहां स्वतंत्रता है वहां वहां धर्म है, जहां जहां धर्म है वहां वहां अहिंसा है। स्वतंत्र व्यक्ति न हिंसा करता है, न कराता है, न हिंसा में आनंद लेता है। स्वतंत्र व्यक्ति सानंद रहता है, अपने आप में आनंद सहित रहता है। का जीवन ही अद्भुत होता है, वो हमेशा चिंतनशील रहते। चिंतनशील व्यक्ति को कहाँ देखा जा सकता है? अहिंसा के क्षेत्र में या हिंसा के क्षेत्र में? बिल्कुल। जो दिन रात चिंतन करके हर काम को विवेक से करता है वो अहिंसक होता है। इन सबको ही ज्यादा चिंतन करना पड़ता है। और धर्म ये चिंतन का रास्ता है, ये क्रिया का रास्ता नहीं। मैं ऐसा कर लूं तो धर्म हो जाएगा, नहीं, दिमाग से चलना है। ये पांवों का रास्ता नहीं, ये दिमाग का रास्ता है धर्म। इसलिए धर्म को क्रियाकांड रूप नहीं कहा। क्रियाकांड उसका साधन बन सकता है, सहायक बन सकता है क्रियाकांड। पर क्रियाकांड के काल में यदि आप चिंतक नहीं, अहिंसक नहीं, स्वतंत्र नहीं, सोच विचार वाले नहीं, तो फिर वो क्रियाकांड क्या करेगा आपके लिए उपकार? कुछ नहीं करेगा, व्यर्थ जाएगा वो। किया कराए सब व्यर्थ, हानि भी है, व्यर्थ भी हुआ, पापाश्रव भी तो हुआ है ना। व्यर्थ काम करने वालों को क्या पाप कर्म का बंध रुकता है? पाप कर्म का बंध होता ही रहता है। इन्हीं बातों को जैन धर्म सिखा रहा है। तीर्थंकरों का यह धर्म स्वतंत्र धर्म है, प्रत्येक प्राणी के लिए है, केवल जैनों के लिए नहीं, तीन लोक के समस्त प्राणियों के है। निगोद से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने जीव राशि इस तीन लोक में भरे पड़े हैं, इन्हीं भव्य जीवों के कल्याण के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश दिया है। हे भव्य जीवों, अहिंसक बनो, स्वतंत्रता का मार्ग अपनाओ, स्वतंत्र हो जाओ, परतंत्र हो, स्वतंत्र बन जाओ। स्वतंत्र बनने के लिए संयम धारण करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय विषयों से हम परतंत्र हैं, उस परतंत्रता को छोड़ना पड़ता है। इस जीवन जो बचा है इसमें क्या करना है? ब्रह्मचर्य रहना है, अहिंसा से रहना है। क्या इंद्रिय विषयों में क्या रखा है? ब्रह्मचर्य से रहना है। चेतन अचेतन वस्तुओं में समता भाव रखकर उनको निर्विकार भावों से निहारना है। इसमें हमारे लिए स्वतंत्रता है कि नहीं? क्या रोकता है कोई? स्वयं की तैयारी हो तो दूसरा भी साथ देता है, और यदि देता भी नहीं है तो दूसरे को भी तैयार करो। आप स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता पाने के लिए स्वतंत्र हो जाओ, प्रेरणा दे दो। इंद्रिय विषयों में रहेंगे तो भी मरना है, छोड़ेंगे तो भी मरना है, इसमें कौन सा अच्छा? इतना ही सोचना है, छोड़ के मरना ही अच्छा। इंद्रिय विषय हमको त्यागने से पहले, हमको छोड़ने से पहले, हम उनको छोड़े क्या? उनको ही हमें छोड़ने दें? वो तो छोड़ेंगे ही हमें, मरण के काल तक इंद्रिय विषय हमें साथ में रहेंगे। आप जब जाओगे तब इंद्रिय विषय आपको त्यागेंगे, वे हमको त्यागने से पहले उनको ही हमें त्यागना है। ये धर्म है। स्वतंत्र किसको होना है? हमें होना है कि इंद्रिय विषयों को होना है? हमें होना है, उन्हीं विषयों से स्वतंत्र होना है, अपने आप को पहचानना है। हमें हम समझ में आ गए तो इंद्रिय विषयों की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्या करना है? अनादिकाल से अनुभव किया है, अब क्या करना है? और एक जीवन क्यों बर्बाद करें हम? बचे दिन थोड़े हैं, उनमें स्वतंत्रता का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, अहिंसा का जीवन जीना है, चिंता रहित जीवन जीना है। विषयों का याद आना, इंद्रिय विषयों का याद आना, ये चिंता ही है, ये दुख ही है, यही हिंसा है, है? इंद्रियां रहती हैं, इंद्रिय विषय बाहर हैं, इंद्रिय शरीर के हैं, भावेंद्रियों को रहते हैं कहेंगे तो भावेंद्रियों का तो केवल क्षयोपशम चलता है साथ में विग्रह गति में। देखो ऊपर एक जन जाओ, इंद्रिय विषय नहीं मिलते हैं तो कूदते हैं, भावेंद्रियों का क्षयोपशम साथ चलता है, उन्हीं क्षोपशम के कारण से इंद्रियां प्राप्त होती है। स्पर्शनेन्द्रिया वर्णी कर्म का क्षोपशम तो एक इंद्रिय मिलता है, दो इंद्रिय इंद्रिया वर्णी कर्म का क्षोपशम हो तो दो इंद्रियां मिलती हैं, तीन इंद्रिया वर्णी कर्म का क्षोपशम हो तो तीन इंद्रियां, पांचों का हो तो पांच इंद्रिय, और अनिंद्रिया वर्णी कर्म का के ऊपर नहीं, ना सुनना है ना सुनने देना है। सुनने के लिए आते तो नीचे आकर के बैठ सकते थे पीछे। कुछ संसारी जीव ऐसे होते, सुनने वाले बंदर तो महाराज के पास भी आते हैं। कई ऐसे प्राणी हैं सुनने की जिज्ञासा वाले, वो संतों के साथ चलते, सत्संग नहीं छोड़ते, और जिनको सुनने की जिज्ञासा नहीं है उनको कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्यों बैठे हैं और क्या चल रहा है यहाँ, वो उदम करते हैं, न सुनते हैं न सुनने देते हैं। इंद्रिय विषय की याद आ गई, हाँ याद आ गई के मतलब क्षोभशम है इसलिए याद आ गई, क्षोभशम होने से याद आती है, याद आने के बाद आकुलता होती है कि इंद्रिय विषय मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिले तो क्या होगा, हमको तो चाहिए। याद आई चिंता स्टार्ट हो गई, ये हिंसा है। इंद्रिय विषयों का चिंतन आश्रव का कारण है कि निर्जरा का कारण, उनकी आशा है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिले तो क्या होगा, इसी में बहुत समय जाता है, जाता है कि नहीं। इंद्रियों की आशा हो तो ही इंद्रिय विषयों को वह ग्रहण करना चाहेगा, और ग्रहण करने से पूर्व याद आता है, याद आने के बाद चिंता होती है, चिंता होने के बाद आकुलता बढ़ती है, आकुलता दुख है, दुख हिंसा है, ये धर्म नहीं, हिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म। दुख ना हो इसके लिए क्या करें, इंद्रिय हो कोई बात नहीं, इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं करना, इंद्रिय विषय की आशा न हो तो फिर दुख होगा ही नहीं, क्या होगा, इंद्रिय हो कोई बात नहीं, पर इंद्रियों के प्रति उनको पूर्ण करने के लिए आशा, विषय आशा वशातीतो कहा है, विषय आशा किसकी पूर्ति के लिए, इंद्रियों की पूर्ति के लिए इंद्रिय विषय चाहिए पड़ती, विषय अलग इंद्रियां अलग, इंद्रिय यहां है विषय बाहर है, इन विषयों को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इन विषयों को हम चाहते हैं, तो ये परवस्तु का ग्रहण ये इंद्रिय विषय है और इंद्रियां यहां हैं, इन वस्तुओं को देकर हम इंद्रियों को तृप्त करते हैं। तो कहा क्या है, इंद्रिय विषयों को त्यागो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो त्यागने योग्य है ही नहीं। न इंद्रियों को त्यागो, न इंद्रिय विषयों को त्यागो, ये नहीं कह रहे हैं। जो ग्रहण के भाव है ना, उन भावों को त्यागो। वो भाव चले गए तो ग्रहण हो ही नहीं सकता। विषय आशा, विषयों के प्रति जो आशा है वो विषय आशा, वशातीतो, वश से रहित रहो, अतीत रहो, उसके वश में नहीं रहना। और ये हमेशा भावना रहनी चाहिए। विषय तो बाहर है, आशा कहाँ है? अंदर है। ऐसा होना चाहिए था, आशा तो बाहर हो और तो बहुत आसान होता त्यागना, आशा अंदर है इसलिए तो मुश्किल है। आशा छूटती नहीं जल्दी, विषयों की आशा नहीं छूटती। हाँ हाँ, इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रिय सुख को पाने की जो आशा है उस आशा के वश में आत्मा को रहना नहीं चाहिए। आत्मा को अलग रखो आशा से, उसके वश में मत रखो, ये कह रहे हैं। आत्मा को आशा के वश में मत रखो, यानी आशा से अलग रखो। आशा अपने अंडर में ले लेती है आत्मा को, तो फिर आत्मा परतंत्र हो जाती है। ये परतंत्रता ही अधर्म है, हिंसा है, दुख है, यातना है, बंधन है। नहीं, इंद्रियों को जब आप ग्रहण, इंद्रिय विषयों को जब ग्रहण करते हैं आशा से ही करते हैं, है ना? आशा के बिना तो ग्रहण किया नहीं जाता, आशा से ही ग्रहण करते हैं। उसकी आशा में, उसके आशा से वश में नहीं रहना। आत्मा को अलग रखो, आशा को अलग रखो। ये किसको कहा? जो चिंतनशील महावृति मुनि हैं उनके लिए कहा, आपके लिए नहीं, आप कर भी नहीं सकेंगे इसको। कर सकते हैं एक देश, पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण भी कर सकते हैं पर मुनि बन करके ही, उससे पहले नहीं कर सकते। इंद्रिय विषयों को पूर्णतः त्यागेंगे तो उनके प्रति आशा होगी नहीं। और मुनि बनने के बाद सावधानी दे रहे हैं, इंद्रिय को, इंद्रिय विषयों को तुमने छोड़ दिया, अब कैसे रहना, ये कला सिखा रहे हैं मुनि को। क्या कह रहे हैं? अब इंद्रिय विषय तो छूट गए हैं, वस्तु अलग हो गए, अब आत्मा रह गई और आत्मा के भीतर आशा उत्पन्न होना इसकी योग्यता है। उत्पन्न हो सकती है कि नहीं? जिस विषय को छोड़ा है उसकी भावना आशा और हो जाए तो हो सकता है। तो यहां जीने की कला सिखा रहे हैं, इंद्रिय विषयों को त्यागा है, अब तुमको इंद्रिय विषयों की आशा को त्यागना है, आशा के वश में तुमको नहीं रहना है। आशा को ही अपने अंडर में रखो, आशा तुम्हारे जैसे चले पर आशा के समान तुम मत चलो। आशा या ये दासा, ते दासा होंति सर्वलोकस्य, आशा ईशाम दासी तेषाम दासो खिलो लोक। इस श्लोक में क्या कहा? आशा के ही जो दास हैं, तो आशा मालिक है और आत्मा उस आशा की आशा का दास है। यहां क्या होता है, आशा जैसी कहती है वैसा आत्मा सुनता है। आशा जिसकी मांग रखती है उसकी पूर्ति आत्मा करता रहता है। तो ये संसार का जीवन है, ये पूर्ण संसार का जीवन है। परंतु रहना कैसे चाहिए, आशा येषां दासी तेषां दासो खिलो लोक। आशा को ही अपने अंडर में रख करके, यानी आशा हम जैसे आत्मा जैसा कहे वैसे आशा करे। ये आशा विषय आज नहीं मिलेगी, विषय आज नहीं मिलेंगे तो आशा को सुनना पड़ता है। आत्मा जैसी कह रही है आत्मा के अनुसार आशा को सुनना पड़ता है। तो आत्मा का ही दासी बने आशा, आत्मा की दासी आशा बने तो कर्म बंद नहीं होगा, आत्मा स्वतंत्र रहेगा, आत्मा धर्मात्मा रहेगा, आत्मा में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, आर्ध रौद्र ध्यान नहीं होंगे, कर्मों का बंद नहीं होगा। ये फायदा है, आशा को अपनी दासी बनाओगे तो ये फायदा है। पर आशा के अंडर में ही आप चलेंगे तो सब नुकसान है, तभी नुकसान। आशा येषां दासी तेषां दासो खिलो लोका। आशा को ही जो अपने अंडर में रख करके चल रहे हैं और स्वयं मालिक बन गए हैं आशा का, तो अखिल लोकः तेषां दासः भवति। पूरा लोक ही उस आत्मा का दास बन जाएगा। और आप देखते भी हैं तीर्थंकरों के चरणों में कौन नहीं जाते, इंद्र जा रहा है, चक्रवर्ती जा रहा है, बचा कौन फिर, इंद्र और चक्रवर्ती ही आ रहे हैं तो बचे कौन। तेषां दासो खिलो लोक, उन तीर्थंकरों का दास पूरे तीन लोक ही उनका दास बन गया। तीर्थंकर जैसे कहे वैसे करने के लिए तैयार है सर, तीन लोक के लिए उपदेश दे दिया तीर्थंकरों ने, अनंत अनंत जीवों को उपदेश दे दिया। ऐसा संसार में कौन दे रहा है, क्यों नहीं दे पा रहा है, तीन लोक को उपदेश देने का प्रभुत्व क्यों नहीं है। आशा दास, आशा के वे दास हैं जीव, इसलिए तीन लोक को उपदेश देने का अधिकार नहीं आ रहा। चक्रवर्ती भी जाकर के कहता है तीर्थंकरों के चरणों में, नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के कृष्ण कह रहा है ये संपत्ति तो आपकी है भगवान, मैं बिछा दो आपके चरणों में तीन खंड की इस संपत्ति को। भरत चक्रवर्ती कह रहा है आदिनाथ भगवान के पास जाकर के, भगवान ये तो आपकी ही थी, हमने ले लिया है, हमको क्या करना है, आपके लिए ही सौंप देता हूं। भगवान कहते मुझे नहीं चाहिए इसलिए तुमको दे दिया। तुम भी कहने लगे कि मेरी नहीं है, आपके चरणों में मैं क्या लूं क्या उसको वापस, जिसको छोड़ना चाहिए हमने छोड़ दिया, अब मैं वापस नहीं ले सकता, और तुमने लिया है तो इसको छोड़ो, ये किसी का नहीं होता है। और चक्रवर्ती ने छोड़ दिया, चक्रवर्ती ने छोड़ दिया, हमने उठा लिया। और हम कहते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, किसकी संपत्ति है ये? वैसा आप पूछोगे हमारी है तो चक्रवर्ती कहेगा सावधान ये मेरी थी। तुम हमारी कहोगे तो चक्रवर्ती कहेगा ये मेरी है, मेरा ही तुमने उठा लिया है, मेरे में से तुमने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा उठा लिया है, सबने बांट लिया है। ये धरती किसकी थी है? आदिनाथ भगवान के काल में पहले तो भोग भूमि थी, तो भोग भूमि में अलग अलग जीव रहते थे, युगल युगल जीव रहते थे, दस दस वृक्ष एक एक युगल के होते थे, वहाँ उसके उपभोक्ता होते थे, ऐसा जीवन था। वहाँ खाने कमाने की बात नहीं थी, व्यवसाय उद्योग शादी वादी कुछ भी नहीं, कर्म भूमि नहीं था। भोग भूमि चली गई, चतुर्थ काल आया, और यहाँ पर चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया, देश दे दिया। तो सारी धरती का मालिक सबसे पहले कौन बने? आदिनाथ भगवान के पिता नाभिराज कर्म भूमि के अधिकारी थे, इसके बाद आदिनाथ, इसके बाद भरत चक्रवर्ती, इसके बाद फिर हम सभी लोग। भरत चक्रवर्ती ने ही जो रख करके चले गए थे, हम चींटी के समान जरा जरा उठा लिया और अपना बना लिया। समय हो गया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।